नमस्कार भारत, शनिवार 31 अक्टूबर, मैं हूं निखिल रंजन। बिहार में चौथे चरण के मतदान के लिए थम गया चुनाव प्रचार, लेकिन जारी है मुस्लिम वोटरों की उहापोह।
के दिमाग में ना ये डाल दिया गया है कि आप यहां पर असुरक्षित हैं, आप अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक शब्द जैसा ही मुंह से निकलता है, इसका मतलब हो जाता है मुसलमान।
बीजेपी पर निगेटिव कैंपेन का आरोप, सुनिएगा मीसा भारती से बीबीसी की खास बातचीत। दिल्ली में बिजली बांटने वाली कंपनियों का ऑडिट कराने से कोर्ट का इनकार, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिया था आदेश। सीरिया में राष्ट्रपति असद को लेकर रूस और अमेरिका की खींचतान जारी। हफ्ते भर की खेल खबरों के साथ होगी फिल्म और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार शुक्रवार शाम को खत्म हो गए। सूबे के 7 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान रविवार 1 नवंबर को वोट डालेंगे। इस चरण में करीब 1.5 करोड़ मतदाता कुल 776 प्रत्याशियों में से अपने विधायक का चुनाव करेंगे। रोमानिया की राजधानी बुखारा में एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। स्थानीय मीडिया के अनुसार आग लगने के बाद वहां बाहर निकलने के लिए भगदड़ मच गई, जिससे स्थिति और भी अधिक खराब हो गई। स्वास्थ्य मंत्री रायद अराफात ने कहा कि फिलहाल 145 लोगों का इलाज नजदीकी अस्पताल में किया जा रहा है। शुरुआती खबरों के अनुसार नाइटक्लब के अंदर हुई आतिशबाजी के चलते आग लगी। खबरों के अनुसार क्लब में एक रॉक कॉन्सर्ट चल रहा था, जिसमें करीब 400 लोग शामिल हुए थे। नाइजीरिया के लाखों लोग अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल इंटरनेट के जरिए करने से महरूम हो सकते हैं। वहां अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराने का शनिवार को आखिरी दिन है। नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक का कहना है कि जिन ग्राहकों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा अब नहीं उठा सकेंगे। सेंट्रल बैंक के संचार निदेशक इब्राहिम मुआजू ने बीबीसी को बताया कि ये रजिस्ट्रेशन नाइजीरिया के बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे घोटालों को रोकने के लिए कराया जा रहा है। उन्होंने कहा,
Now it has been, you know, a challenge. You find the banks assessing certain level of risk.
कई लोग होते हैं जो बैंकों से जाकर कर्जा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं बताते कि उन्होंने और भी कई बैंकों से कर्ज ले रखा है। ऐसे में इस स्थिति से निपटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, जिससे इस तरह की धांधली पर रोक लगाई जा सके। सेंट्रल बैंक के संचार निदेशक इब्राहिम मुआजू। भारत में पाकिस्तान के उच्च आयुक्त अब्दुल बासित ने जमात उद दावा को परोपकारी संस्था बताया है। अब्दुल बासित ने बेंगलुरु में कहा कि जमात उद दावा एक दानकर्ता संगठन है, हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने ये बयान हाफिज सईद की संस्था जमात उद दावा पर किए गए एक सवाल के जवाब में दिया। जमात उद दावा अमरीका के जरिए जारी प्रतिबंधित संगठनों में से एक है। चेन्नई पुलिस ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की कथित आलोचना करने वाले क्रांतिकारी लोक गायक शिवराज को गिरफ्तार किया है। स्थानीय पत्रकार केवी लक्ष्मणन के मुताबिक चेन्नई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम तिरुचिरापल्ली से शिवराज को चेन्नई लेने गई है। शिवराज उर्फ कोवन पीपल्स आर्ट एंड लिटरेरी एसोसिएशन पाला के मुख्य गायक हैं, जो कि तमिलनाडु में सरकारी शराब की दुकानों टैस्मैक को बंद करने के लिए अभियान चला रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। आप ये कार्यक्रम bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं, आज निखिल रंजन के साथ। शुरुआत करते हैं बिहार के चुनावी समर से। बिहार के चुनावों में राजनीतिक दृष्टि से मुसलमानों की विशेष अहमियत है। राज्य में मुसलमानों की आबादी लगभग 17% है। हमारे सहयोगी शकील अख्तर ने पूर्णिया में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से जानना चाहा कि वो दशकों से जिन चीज़ों को मुद्दा मानते रहे हैं, क्या इस बार भी उसी ढर्रे पर चलेंगे या फिर चुनावों में कुछ नया मुद्दा होगा। आइए सुने ये बातचीत।
नाम बताइएगा अपना।
मोहम्मद इसराइल।
इसराइल साहब, यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर तरह के नए नए मसाइल हैं, शहर के डेवलपमेंट का मसला है। अभी किसी ने जिक्र किया कि आपके इलाके की सड़कें बहुत ख़राब हैं, तो आपके इलेक्शन में ये सब जो है मौजू मुद्दा रहता है कि नहीं?
रहता है, लेकिन इलेक्शन बाद कोई सुनता नहीं। अभी तो सब कहेगा हम बना दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई झांकी मारने नहीं आ रहे
हैं। तो महंगाई की बातें हो रही हैं क्या?
इलेक्शन में इशू नहीं है, इलेक्शन में हम कैसे कुर्सी पकड़े हैं इसका इशू।
हबीब साहब, आप तो खुद इलेक्शन लड़े हुए हैं और इंडिपेंडेंट भी लड़े, आरजेडी में भी रहे, तो आप बहुत मायूस लगते हैं सियासी जमातों से, ऐसा क्यों है?
मायूस सर इसलिए है कि हम लोग का ऊपर वाले नेता आप क्या सोच करके हम लोग को माइनस करते हैं, भागीदारी हम लोग को राजनीति में नहीं मिल रहा है, यही सब से दुखी होकर के हम लोग अपना मायूस होकर बैठे रहे हैं।
ज़्यादातर मुसलमान जो है वो खुलेआम जो है वो एकदम साफ है कि बीजेपी के खिलाफ रहते हैं, और मुल्क के प्रधानमंत्री बीजेपी के पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो कहते रहे कि हम सबको साथ लेके चलने की बात करते, तो क्या आपको उनकी बातों पर विश्वास नहीं? मुसलमानों को क्या एक बार उन्हें वोट देना चाहिए या नहीं?
देखिए, अभी 16 महीना के रीजन में जो सब उन्होंने टीवी में या मीडिया में या पेपर में जो सब भाषण दिए हैं, बयान दिए हैं, उससे तो ये सभी को साथ में लेके चलने के लिए ये नहीं चाह रहे कि सभी समुदाय को लेके हम चलें।
जहूर साहब, अभी जैसे इन्होंने कहा कि पूरे देश में जो जो घटनाएं हुई, वाक़यात जो होते हैं, उससे मुसलमानों के जहन में सलामती को लेकर शुबा पैदा होता है, इसलिए वो आरजेडी या जेडीयू की तरफ जाते हैं, बीजेपी की तरफ नहीं। क्या आपको लगता है कि इस बार किसी और को देना चाहिए या बीजेपी की तरफ देना चाहिए वोट?
देखिए, आदमी तो सब वही है, वही आदमी कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी कांग्रेस में, कभी जदयू में। अब उसमें हर आदमी का हर तरह का ख्याल है। हम लोगों के ऊपर जो लोग नेता बन के आए हैं, हम लोग जो देखे हैं, उसमें से जो बेहतर है सामूहिक तौर से जो काम करने वाले हैं, हम लोग उसी को वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी का हो या जनता दल का हो या कांग्रेस का हो।
रामचंद्र जी, ये बताइए कि यहाँ पर वोट अगर आप देते हैं तो क्या सोच के देते हैं?
सबका साथ सबका विकास।
और आपको ये लगता है कि जब प्रधानमंत्री, जैसे अभी आपने अपने साथियों के, अपने दोस्तों की बातें सुनी जो मुस्लिम हैं, इनको लगता है
प्रधानमंत्री जी भी कुछ जो है गलत बोल चुके हैं और बहुत कुछ अधिक बोल चुके हैं अच्छे, अब रह गई विश्वास करने की बात। तो हम तो पहले कांग्रेसी थे, कांग्रेस पर विश्वास किए और खानदानी कांग्रेसी थे, लेकिन उनका जो मैनोफेस्टो था जो गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ का केवल नारा था, गरीबी हटा नहीं, गरीबी है, हम ब्राह्मण हैं, अगरबत्ती क्यों दिखाते हैं हम, हमारे ऊपर जो है क्यों नहीं सब जात का जो है कमीशन बना।
अच्छा पंडित जी, बताइए मुसलमानों के बारे में अगर आपसे पूछूं कि ये लोग पीछे हैं, और भी हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग पीछे हैं, लेकिन इनके अंदर बीजेपी से थोड़ा सा लगता है कि ये लोग डरते हैं, क्या क्या आप क्या सोचते हैं?
हाँ, डरते हैं, जरूर डरते हैं, डरते हैं, है ना, जो ये बीजेपी हिंदूवादी है, लेकिन ये सोच जो है ये अच्छी नहीं है। जैसे पहले हम कह चुके हैं, छोटी छोटी घटना हो जाती है तो कुछ भय पैदा हो जाता है, जैसे मुजफ्फरनगर की बात की ना आ गई, अब मुजफ्फरनगर में ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ जो है जो कुछ भी हुई वह अच्छी नहीं हुई, चाहे उसमें कांग्रेस वाले हों, चाहे भाजपा वाले हों, चाहे आरजेडी वाले
हों। और यहाँ पे असर पड़ता है मुसलमानों पे?
जी हाँ, कुछ कुछ ना कुछ, दो आना एक आना तो पड़ता ही है, क्यों नहीं पड़ेगा? हमारे बगल में अगर आग लग जाएगा तो हम उससे वंचित थोड़े हैं।
रई साहब, आपने इन सभी की बातें सुनी, जो मुसलमानों के मसले हैं वही हिंदुओं के मसले हैं, और जितने मुसलमान यहाँ पे पीछे होंगे शायद हिंदुओं की उससे ज़्यादा बड़ी अक्सरियत उतनी ही गरीब और उतनी पीछे होगी, लेकिन बाकी लोग जो वोट देते हैं वो अपने ऊपर उठने के लिए, आगे आने के लिए, मुसलमानों के जहन में ऐसा क्यों रहता है कि वो सलामती और सुरक्षा का सवाल सबसे अहम उनके दिमाग में रहता है, ऐसा क्यों?
देखिए, वो एक बाल जीवन घुट्टी आया करता था, है ना, बच्चे को बचपन से ही पिलाते थे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि इनके दिमाग में ना ये डाल दिया गया है कि आप यहाँ पर असुरक्षित हैं, आप अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक शब्द जैसा ही मुँह से निकलता है इसका मतलब हो जाता है मुसलमान, अल्पसंख्यक का मतलब यहाँ पर सिख नहीं होता है, यहाँ पर ईसाई नहीं होता है, जबकि उनकी संख्या मुसलमानों से इस देश में कम है। ये पता नहीं क्यों अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान हो जाता है। तो जहन का फ़र्क है कि जहन में घुसा दिया गया है कि आप अल्पसंख्यक हैं, आप डरे हुए हैं और आप डरे हुए रहिए, और ये लोग इस डर से निकलना नहीं चाहते हैं।
बिहार के चुनाव में मुसलमानों के लिए क्या मुद्दा है, ये जानने की कोशिश कर रहे थे हमारे बीबीसी संवाददाता शकील अख्तर। और इस बार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव की बेटी मीसा यादव भी काफ़ी सक्रिय हैं, वो आरजेडी की स्टार प्रचारक हैं, लेकिन वो इन दिनों पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी नाराज़ हैं। नरेंद्र मोदी ने एक रैली के दौरान ये कहा था कि लालू यादव लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी को सेट नहीं कर पाए। मीसा भारती लोकसभा चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई, हमारे सहयोगी पंकज प्रदर्शी चुनाव में बिहार का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने मीसा भारती से मुलाकात की और कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। आइए सुनिए बातचीत।
मुझे लगता है कि मोदी जी को सेकेंड फेज के बाद ये लगने लगा है कि वो लोग हार रहे हैं और हताशा और निराशा में उन्होंने जो मुझ पे उन्होंने जो आरोप लगाया लालू जी के ऊपर कहा कि बेटी को सेट करना चाह रहे थे जो लोकसभा के समय सेट नहीं कर पाए। मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ रही हूँ, मैं तो महागठबंधन के लिए स्टार प्रचारक मुझे बनाया गया है, मैं उनके लिए प्रचार कर रही हूँ, जितने भी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके लिए कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं ये देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कि महिलाओं का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते हैं और उनसे अपेक्षा भी नहीं है महिलाओं की, क्योंकि वो आरएसएस के प्रचारक रहे और आरएसएस के अंदर महिलाओं का कोई भी स्थान नहीं है। महिलाओं का स्थान सिर्फ आरएसएस के अंदर इतना ही है कि वो सिर्फ उनके नेताओं के पैर धोने तक का ही उनका काम है।
जो अभी तक चुनाव प्रचार रहे हैं उसमें आरोप ये है कि आपके गठबंधन की ओर से भी कुछ बातें ऐसी कही गई हैं, भाजपा ने भी कहा है, तो एक तरह से ये कहा जा रहा है कि सारा फोकस जो है नकारात्मक कैंपेनिंग पे चल रहा है।
देखिए आप कह रहे हैं जो बिल्कुल सही है, लेकिन शुरुआत किसने की? आप देखिए जब चुनाव शुरू हुआ तो हमारे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो 4-5 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने हमारे नेताओं को क्या कह के गए, 3 इडियट्स की संज्ञा दे दी। हमेशा उनकी जो पूरी रिसर्च होती है वो बहुत अधूरी सी रहती है, किसी चीज़ पे वो कमेंट जल्दी कर देते हैं लेकिन उसके अंदर घुस के नहीं देखते हैं। जो 3 इडियट्स थे वो उस फिल्म के 3 हीरो थे।
इस चुनाव में नीतीश जी पर तो नहीं उतना, लेकिन आपके पिताजी के शासनकाल को जंगल राज कह कह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इस महागठबंधन में लालू जी ही सबसे ज्यादा निशाने?
देखिए क्योंकि लालू जी बहुत मजबूत नेता हैं बिहार के अंदर, एक मास लीडर है, तो हमेशा लोग टारगेट करते, और बीजेपी को ये लगता है कि हम जितना लालू जी का नेगेटिव पॉइंट्स जनता के बीच लाएंगे तो हमारा वोट ज्यादा प्रतिशत बढ़ेगा। तो
आपके दोनों भाइयों को भी टारगेट किया जाता है, खासकर उनकी पढ़ाई को लेकर जिस तरह सवाल उठे।
देखिए जो एजुकेशनल उनका जो कहा गया, क्योंकि बड़ा भाई मेरा इंटर पास है, वो आगे बीए की पढ़ाई कर रहा है, इलेक्शन के लिए जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो आप जितनी पढ़ाई कर चुके होते हैं उसी को उसमें लिखना होता है, आप आगे क्या कर रहे हैं उसको उसमें मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे भाई तेजस्वी के लिए कहा गया कि वो 9th पास है, शुरू से उसका रुझान खेल के प्रति रहा, हमेशा वो क्रिकेट में और बाहर जाता रहा है, देश से बाहर भी रहा उस समय, और कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई जो पूरी ना हो सकी उसमें खेल का रहा। और मुझे लगता है कि आप सब लोग आरटीआई एक दायर की गई थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी की क्या क्वालिफिकेशन है वो बताया जाए, वो आज तक हम नहीं जानते कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उनकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हर एक चुनाव में उन एफिडेविट में चेंज हो जाता है।
अगर भविष्य में महागठबंधन की सरकार बनती है तो एक ये भी कहा जाता है कि लालू जी और नीतीश जी साथ साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं।
देखिए जब गठबंधन बन रहा था तो भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, पहले तो था कि लालू जी नीतीश जी के नाम पे मानेंगे ही नहीं, फिर आया कि भाई सीट के मामले में भी लालू जी शायद नहीं मानेंगे, कम से कम 150 सीट मांगेंगे, लेकिन हम 101 और 41 सीट हम लोगों ने अच्छे से, जो तीनों दल हैं राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और जेडीयू, अच्छे से आराम से, किसी को कानो कान खबर नहीं कौन किस सीट से लड़ेगा ये भी हम लोगों ने आराम से बैठ करके बात कर ली।
आपके भाइयों के बारे में कहा गया कि अगर वो जीतते हैं और सरकार बनती है तो बड़ा पद मिलेगा, उप मुख्यमंत्री?
देखिए अभी तक इस पे कोई चर्चा हुई नहीं है और मेरी जानकारी में भी नहीं है, लेकिन क्योंकि विधायक का चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं, तीनों दल मिलके सरकार बना रहे हैं, तो सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी ये हमारे बड़े नेता बैठ करके आपस में तय करेंगे।
बीजेपी जो ये लालू जी ने जो ब्रह्म पिशाच वाला बयान दिया उसको भी खूब बुनाती है कि काला कबूतर ये सब चीज़ें जो थी, तो उसमें उसमें कहा गया कि लालू जी कॉमेडी कर रहे हैं प्रचार में,
क्योंकि वो बहुत सिंपल तरीके से हंसी मजाक के लहजे में बहुत सीरियस मुद्दा भी लालू जी समझा जाते हैं, इसलिए जो विपक्ष के जो नेता हैं उनको इस तरह का बोलते हैं कि मजाक कर रहे हैं या, लेकिन वो उनका एक अपना स्टाइल है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। आप उनसे अपेक्षा क्या करते हैं कि वो उनकी तारीफ करेंगे?
आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा यादव से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी पंकज प्रदर्शी। और अब बात इंडिया बोल की।
बीबीसी इंडिया बोल।
बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और बाकी 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। शनिवार 31 अक्टूबर को प्रसारित होने वाले इंडिया बोल का विषय है, क्या बिहार के चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी ने विकास के मुद्दे को पीछे छोड़ दिया है?
बीबीसी इंडिया बोल।
तो आप भी फोन करना मत भूलिएगा। नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर निखिल रंजन के साथ। और अब खबर दिल्ली से। शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट के मामले में आए एक फैसले को केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले में कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट नहीं होगा, जबकि दिल्ली सरकार लगातार इन कंपनियों के सीएजी ऑडिट के बात कर रही थी और इसके बारे में आदेश भी जारी कर दिए गए थे। एक रिपोर्ट के साथ हैं रोहित जोशी।
जनवरी 2014 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की तीनों ही बिजली आपूर्तिकर्ता कंपनियों बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा पावर के सीएजी ऑडिट कराने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ इन कंपनियों ने उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। इस पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की एक विशेष बेंच ने शुक्रवार को इन कंपनियों को सीएजी ऑडिट से राहत दे दी है। हालांकि इससे पहले एकल न्यायाधीश की एक बेंच ने इन कंपनियों की अर्जी खारिज करते हुए इन्हें जांच में सरकार को सहयोग करने को कहा था, लेकिन एकल न्यायाधीश के इस फैसले के खिलाफ इन कंपनियों ने डबल बेंच में अपील की थी। शुक्रवार को बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट को खारिज करने के डबल बेंच के इस फैसले को आम आदमी पार्टी सरकार के लिए एक झटका माना जा रहा है, लेकिन पार्टी का कहना है कि वे इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली दिलाने के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उधर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
अगर आप इसको इस नजरिए से देखें कि दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी सस्ते में बिजली दिलाना चाहती थी, दिल्ली वालों को सस्ती बिजली मिले, तो उस कोशिश को एक झटका जरूर कह सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की लड़ाई लगातार ये है कि दिल्ली वालों को देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली मिले, वो कोशिश हमारी लगातार जारी रहेगी।
दूसरी तरफ इस मसले पर कांग्रेस भी केजरीवाल के साथ खड़ी दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन ने भी केजरीवाल सरकार को इस मसले पर जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है।
तो ये अपने आप में एक बहुत संजीदा मामला है और मैं केजरीवाल जी से, दिल्ली सरकार से अनुरोध करूंगा कि बगैर किसी समय को गंवाएं एकदम से ये हायर कोर्ट के अंदर जाएं और ऑडिट के लिए कहें और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को चैलेंज करें।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की एक शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियां अपने खाते में हेराफेरी करती हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली की तीनों डिस्कॉम कंपनियों ने अपना घाटा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है।
दिल्ली में बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं होगा, रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। इधर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो सीरिया के गृहयुद्ध में अलग अलग पक्षों को समर्थन दे रहे देश युद्ध को खत्म करने की दिशा में काम करने पर प्रतिबद्धता जता रहे हैं। हालांकि वेना में हुई इस बातचीत में शामिल देशों के बीच राष्ट्रपति असद के भविष्य को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। पूरा ब्यौरा सुनिए अमल चौधरी से।
सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध को लेकर कई देशों के अलग मत हैं और वो उसी आधार पर अलग अलग पक्षों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब सभी देश सीरिया में इस गृह युद्ध को खत्म करने को लेकर एकजुट होते दिख रहे हैं। हालांकि वियना में अलग अलग पक्षों का समर्थन कर रहे देशों की बातचीत तो हुई, लेकिन उनके बीच राष्ट्रपति बशर अल असद को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति असद कोई भूमिका ना निभाएं, तो वहीं रूस और कुछ अन्य देश असद का समर्थन कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा, मैं जोर देकर कहूंगा कि सीरिया के प्रति अमेरिका के रुख में बदलाव नहीं आया है। सरगेई लावरोव, विदेश मंत्री जारिफ, मैं और दूसरे लोग असहमतियों पर सहमत हैं। अमेरिकी रुख ये है कि राष्ट्रपति सीरिया को एकजुट नहीं रख सकते, ना ही वहां सरकार चला सकते हैं। हमारा मानना है कि सीरियाई लोग एक अलग विकल्प के हकदार हैं और हमारा उद्देश्य सीरिया के उन अलग अलग गुटों के साथ काम करके इस विकल्प को विकसित करना है, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी। हालांकि रूस ने भी असद के राष्ट्रपति बने रहने के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन साथ ही ये साफ कर दिया कि असद का भविष्य कोई और देश तय नहीं कर सकता। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा, जैसा कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है, हमारे बीच असद के भविष्य पर कोई सहमति नहीं हुई है। रूस मानता है कि यह सीरियाई लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया के ढांचे के भीतर रहकर ही तय करना होगा। ये उन्हें तय करना है कि उन्हें अपने देश के लिए क्या चाहिए। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। संयुक्त राष्ट्र से कहा गया है कि वो सीरियाई सरकार और उनके विरोधियों को एक राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करे। सभी देश दो हफ्ते बाद फिर से इस मुद्दे पर बात करने के लिए इकट्ठा होंगे। वहीं सऊदी अरब पहले ही कह चुका है कि ईरान को सीरिया संकट के समाधान के लिए राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाए जाना स्वीकार करना ही होगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अदल अल जुबैर ने सीरिया संकट के समाधान के लिए वियना में हो रही कई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में ये बात कही। ईरान इस तरह की बातचीत में पहली बार शिरकत कर रहा है, जिसमें रूस और तुर्की भी शामिल हैं। रूस और ईरान सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन करते हैं। वहीं अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब सीरिया के भविष्य में बशर अल असद की कोई भूमिका नहीं होगी।
सीरिया पर अमरीका और रूस में कुछ मुद्दों पर सहमति तो कुछ मुद्दों पर असहमति। रिपोर्ट सुना रहे थे अमल चौधरी। और अब इस हफ्ते के फिल्म की बात। शुक्रवार को निर्देशक कनु बहल की फिल्म तितली रिलीज हुई और इस फिल्म के बारे में क्या कुछ है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी राखी शर्मा ने फिल्म समीक्षक अर्णव बैनर्जी से बातचीत की।
मेरा नाम तितली है। हेलो।
इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है कनु बहल की फिल्म तितली ने। तितली का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णव बैनर्जी। अर्णव, कितनी ऊंची उड़ान भरी इस तितली ने।
तितली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये दिल्ली के आसपास की एक फैमिली की कहानी है जो डिसफंक्शनल फैमिली है। वहाँ पे एक बाप है और तीन बेटे हैं, लेकिन तीनों के पास काम नहीं है और वो कार जैकिंग करते हैं। तितली एक स्टेटमेंट भी है एक चेंजिंग टाइम्स पे। फिल्म याद दिलाती है इटालियन सिनेमा की, यूरोपियन सिनेमा की 60s की, जब बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आ रहा था, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था।
ये एक तो तितली नाम के पीछे भी कुछ कहानी है फिल्म में।
जी, एक कहानी है। उनकी माँ को लगता है कि दो लड़के हो गए हैं तो एक लड़की होनी चाहिए, तो वो पहले से ही तितली नाम रख देती हैं, ये सोच के कि शायद लड़की ही होगी, लेकिन फिर भी लड़का हो जाता है।
शशांक अरोड़ा ने ये किरदार निभाया है तितली का, तो इनकी पहली फिल्म है।
शशांक की पहली फिल्म है, उनके साथ एक और लड़की है शिवानी रघुवंशी, उनकी भी पहली फिल्म है। फिल्म में जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है राइटिंग की। इतनी सहज तरीके से एक अंडरबेली यानी दिल्ली के आसपास एक फैमिली है जिनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ चोरी ही करना आता है, इतनी सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। एक गरीब फैमिली है लेकिन वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ये जो फ्रस्ट्रेशन है अंडरबेली का, ये बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है राइटिंग के जरिए।
ओए रब्बा मेरे आ एक गल ते दस, सानू बना के तू क्यों ना कीती ही बस, दस की लभ्या दस की लभ्या दस की लभ्या, ए बंदा बना के तू दस की लभ्या दस की लभ्या दस की लभ्या।
एक इकलौते जो जाना पहचाना नाम इस फिल्म में मुझे दिखता है वो रणवीर शौरी का है।
जी।
तो रणवीर शौरी हो तो कुछ कॉमिक ऐसे पंचेस आते ही हैं फिल्म में।
मुझे लगता है रणवीर शौरी बहुत अच्छा अभिनेता है लेकिन उनको अच्छे रोल्स नहीं मिल पाते। जब भी रोल्स मिलते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो या वो कोई सीरियस रोल हो, बखूबी निभाते हैं। यहाँ भी वो बड़े भाई हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, प्यार करते हैं भाइयों को लेकिन वो चाहते हैं कि उनका धंधा और बढ़े, लेकिन वो मर्डर करने से डरते हैं।
कनु बहल की इस फिल्म में कोई तो खामी नजर आई होगी आपको।
अगर कोई खामी कही जा सकती तो वो यही है कि फिल्म ऐसी हम काफी देखते आ रहे हैं लेकिन ये डिसफंक्शनल फैमिली कुछ अलग है।
तो आप तितली को कितने मार्क्स देने वाले हैं?
मैं तितली को 5 में से 4 दूंगा।
और तितली पर अब जानते हैं जनता की राय क्या है।
फिल्म तो बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म थी। इट्स लाइक अभी भी मैं उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही।
फिल्म काफी इंटरेस्टिंग थी, थोड़ी डार्क साइड पे थी, वैसे ओवरऑल अच्छी लगी मुझे।
सारे कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे।
रणवीर शौरे की एक्टिंग इज अमेजिंग, बहुत ही अच्छे एक्टर है वो।
3.5।
तेरा नाम तितली क्यों रखा? हाथी, चीता, घोड़ा कुछ भी रख देते।
आना जरूर हमें देखने, भूलना मत। डैडी बावला विक्रम नीलू तितली।
और अब इस हफ्ते की खेल खिलाड़ी आदेश कुमार गुप्त से।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। पहले तो 2020 और उसके बाद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज अपने नाम कर चुकी मेहमान दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम अब टेस्ट सीरीज में भी भारत का इम्तिहान लेने की तैयारी में जुट गई है। दोनों देशों के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज अगले सप्ताह गुरुवार से शुरू होने जा रही है, जिसका पहला टेस्ट मैच मोहाली में खेला जाएगा। पहले टेस्ट मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका मुंबई में भारतीय बोर्ड अध्यक्ष एकादश के खिलाफ 2 दिवसीय अभ्यास मैच खेल रही रही है, जिसके पहले दिन कल स्टंप के समय उसने 2 विकेट खोकर 46 रन बना लिए थे। इससे पहले भारतीय बोर्ड अध्यक्ष एकादश के कप्तान चेतेश्वर पुजारा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पूरी टीम 296 रन बना सकी। सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने 72, विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने 52, हार्दिक पांड्या ने 47 और करुण नायर ने 44 रन बनाकर टीम को मजबूती दी, लेकिन चेतेश्वर पुजारा केवल 5 रन बनाकर वर्नॉन फिलेंडर का शिकार बने। वैसे दक्षिण अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने 41 रन देकर 3 विकेट लिए और सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भी 46 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीकी टीम टेस्ट मैचों में भी भारत के लिए मुश्किलें पेश करेगी।
आप देखें, पहला मैच जब वो दौरे पे आए और अभ्यास के रूप में खेला था इंडिया ए से, एक तरफा हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा ये अभ्यास मैच था, इससे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद T20 जीते, फिर 50 ओवर की जीते। टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर उन्हें दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस वनडे क्रिकेट और T20 जीतने से जो उनका आत्मविश्वास वो इतना बड़ा हुआ होगा कि वो भारतीय टीम को टेस्ट मैचों में भी तंग करेंगे।
और अब बात बैडमिंटन की। जर्मनी में खेले जा रहे बिटबर्गर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल वर्ग में भारत की स्टार जोड़ी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की हार के साथ ही भारत की चुनौती भी पूरी तरह समाप्त हो गई। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा का अभियान दूसरे दौर में ही नीदरलैंड्स की सामंथा बार्निंग और इरिस ताबेलिंग ने समाप्त किया और उन्हें 23-21, 13-21, 26-24 से मात दी। यानी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने हारने से पहले कड़ा संघर्ष किया। वहीं पुरुष एकल वर्ग में भारत के BSI प्रणीत भी प्री क्वार्टर फाइनल में ही हार कर बाहर हो गए। उन्हें 5वीं वरीयता हासिल इंग्लैंड के राजीव आसिफ ने 17-21, 21-6, 21-18 से हराया।
और खेल खिलाड़ी के बाद अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। अमल चौधरी अखबारों पर नजर डाल चुके हैं, बताइए अमल क्या है आज के अखबारों
जी। निखिल, आज की मुख्य खबरों की बात करें तो द स्टेट्समैन, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो है मूडी, उसकी भारत सरकार को उसने जो चेतावनी दी है उसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है। एजेंसी के अनुसार देश में बढ़ती जो असहिष्णुता है के चलते उसकी जो छवि खराब हो रही है उसका असर उसकी रेटिंग पर पड़ सकता है, ये मूडी ने कहा है। वहीं कैग द्वारा डिस्कॉम के ऑडिट नहीं किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को भी प्रमुखता से प्रकाशित हर अखबार में इस खबर को लिया गया है। और अधिकतर अखबारों ने इसे आम आदमी पार्टी के लिए झटका बताया है। एक खबर है, एक और अन्य खबर है जो सीधे लोगों से जुड़ी हुई है, जिसमें विमान यात्रा और भी महंगी हो जाएगी, जिसमें नागर विमानन मंत्रालय ने करीब किराए में 2% सेस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे अगर मान लिया जाता है तो करीब हर टिकट में 2500 रुपये जो है वो किराया यात्री को अधिक देना पड़ेगा।
ये अंतर्राष्ट्रीय किराए की बात हो रही है?
नहीं नहीं, यहाँ पे अपने यहाँ पे
2500 तो बहुत ज्यादा
जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाएगा, और यही 2% बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है। और वहीं स्टेट्समैन के पहले पन्ने पर एक तस्वीर भी प्रकाशित की गई है, जिसमें तुर्की से समुद्र के रास्ते ग्रीस आ रहे शरणार्थियों की जो नाव है उसे डूबते हुए दिखाया गया है, और तस्वीर में कई लोग हैं जो अपने परिजनों को ढूंढने में लगे हुए हैं। और इसमें यह भी देखा जा सकता है कि नाव में भी क्षमता से अधिक लोग काफ़ी सवार हैं, जो हम लोग आए दिन खबरों में देखते हैं कि पढ़ते रहते हैं कि नाव में काफ़ी क्षमता से अधिक लोग सवार थे, इसमें भी इस तस्वीर में भी ऐसा ही साफ देखा जा सकता है। वहीं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा को जो अलग होने की धमकी दी है और भाजपा ने इसे एक नाटक बताया है, उसे भी प्रमुखता से हर अखबार में प्रकाशित किया गया है। निखिल,
बहुत शुक्रिया अमल चौधरी अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए। और अब प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार शुक्रवार शाम खत्म हो गए। सूबे के 7 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान रविवार 1 नवंबर को वोट डालेंगे। रोमानिया की राजधानी बुखारा में एक नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। स्वास्थ्य मंत्री रायद अराफात ने कहा कि फिलहाल 145 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। नाइजीरिया के लाखों लोग अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल इंटरनेट के जरिए करने से महरूम हो सकते हैं। नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक का कहना है कि जिन ग्राहकों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। भारत ने पाकिस्तान के उच्च आयुक्त अब्दुल बासित ने जमात उद दावा को परोपकारी संस्था बताया है। अब्दुल बासित ने बेंगलुरु में कहा कि जमात उद दावा एक दानकर्ता संगठन है। चेन्नई पुलिस ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की कथित आलोचना करने वाले क्रांतिकारी लोकगायक शिवराज को गिरफ्तार किया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। नमस्कार भारत में इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद विश्व भारती में। तब तक खबरें देखने के लिए bbchindi.com पर आइए। आज स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने, सभी साथियों संग निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।